एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं 20वीं सदी के एक ऐसे विचारक की जो काफी कह सकते हैं उत्तेजक थे और विवादास्पद भी, पॉल फेयरबैंड।
हाँ, पॉल फेयरबैंड। उन्हें अक्सर ज्ञान का अराजकतावादी कहा जाता है। कुछ लोग तो उन्हें विज्ञान के दर्शन का एनफान टेरिबल भी कहते हैं, मतलब एक तरह का बिगड़ायल बच्चा।
बिल्कुल। 1924 ऑस्ट्रिया में जन्मे, बाद में अमेरिकी नागरिक बने और उन्होंने विज्ञान की, मतलब उसकी नींव पर ही सवाल खड़े कर दिए।
सही, उनका बड़ा सवाल था, क्या विज्ञान सच में किसी एक तयशुदा वैज्ञानिक पद्धति से ही आगे बढ़ता है, या ये पूरी प्रक्रिया असर में कहीं ज्यादा बेतरतीब है, मौका परस्त है, यहाँ तक कि अराजक।
और यही सवाल मुझे लगता है उन्हें आज भी बहुत प्रासंगिक बनाता है, खासकर आज जब हम एक्सपर्ट्स की सुनते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान को अक्सर, मतलब, आखिरी सच मान लेते हैं।
हाँ, फेयरबैंड हमें रोक कर सोचने पर मजबूर करते हैं कि जिसे हम तर्कसंगत या रैशनल मानते हैं, कहीं वो खुद ही एक तरह की हठधर्मिता तो नहीं बन गया है।
तो चलिए इस दिलचस्प विचारक के विचारों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं।
देखिए, फेयरबैंड के विचार एकदम से नहीं आए। उनका समय था 20वीं सदी का उथल पुथल वाला दौर, फांसीवाद, दूसरा विश्व युद्ध, फिर शीत युद्ध।
हाँ, वो माहौल ही ऐसा था।
बिल्कुल, और इसी माहौल ने, मुझे लगता है, सत्तावादी सोच के खिलाफ उनके मन में एक गहरा शक पैदा किया। फिर वियना में उनका बौद्धिक विकास हुआ, जहां उस समय तार्किक प्रत्यक्षवाद का बड़ा जोर था।
लॉजिकल पॉजिटिविज्म, जो हर चीज को तर्क और अनुभव पर कसना चाहता था।
हाँ, लेकिन युद्ध के बाद ना, विज्ञान के दर्शन में भी बड़ी दिलचस्प बहसें शुरू हुई।
जैसे कि कार्ल पॉपर की।
हाँ, एक तरफ कार्ल पॉपर थे अपने मिथ्याकरण के सिद्धांत के साथ कि कोई थ्योरी वैज्ञानिक तभी है अगर उसे गलत साबित करने का कोई तरीका हो।
और दूसरी तरफ थॉमस कुहन, पैराडाइम शिफ्ट वाले।
बिल्कुल, कुहन कह रहे थे कि विज्ञान सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि क्रांतिकारी बदलावों से, मतलब पैराडाइम शिफ्ट से आगे बढ़ता है।
तो इसी माहौल में फेयरबैंड अपनी अलग राह बना रहे थे।
हाँ, पॉपर, कुहन, इमरे लाकाटोज, ये सब उनके समकालीन थे, कभी दोस्त कभी तीखे आलोचक। और फिर अमेरिका में बर्कले में 60 के दशक का वो काउंटर कल्चर मूवमेंट,
उसका भी असर पड़ा होगा उनके विचारों पर।
मुझे लगता है। हाँ, क्योंकि वो मूवमेंट भी स्थापित मान्यताओं और सत्ता को चुनौती दे रहा था। फेयरबैंड के विचारों में वो झलक दिखती है।
उनके शुरुआती जीवन की बात करें तो वो सिर्फ किताबी कीड़े नहीं थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वियना में जन्मे फेयरबैंड को थिएटर, ओपेरा में गहरी रुचि थी। वो तो एक ट्रेंड सिंगर भी थे, सोचिए।
ये तो दिलचस्प है।
हाँ, उनके व्यक्तित्व का एक अलग ही पहलू। लेकिन फिर दूसरा विश्व युद्ध आया और सब बदल गया। उन्हें जर्मन सेना में जाना पड़ा।
पूर्वी मोर्चे पर भी लड़े वो और आयरन क्रॉस भी मिला।
हाँ, पर एक भयानक चोट भी लगी, 3 गोलियां एक रीढ़ की हड्डी में।
ओहो।
और उस चोट ने उन्हें जीवन भर दर्द दिया, पर शायद उससे भी ज्यादा इसने उन्हें अमूर्त आदर्शों, बड़ी बड़ी विचारधाराओं जिनके नाम पर इतनी हिंसा होती है, उनके प्रति बहुत शक्की बना दिया।
युद्ध के बाद फिर पढ़ाई शुरू की उन्होंने, पहले भौतिकी फिर दर्शन शास्त्र।
जी, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कार्ल पॉपर के छात्र भी बने।
ये तो मजेदार है, पहले छात्र फिर सबसे बड़े आलोचक,
है ना? यही तो दर्शन की दुनिया है। उनका एकेडमिक सफर फिर उन्हें ब्रिस्टल और फिर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले ले गया, जहां उन्होंने बहुत लंबा समय बिताया।
अच्छा, अब आते हैं उनके सबसे मशहूर और शायद सबसे विवादास्पद काम पर, 1975 की किताब अगेंस्ट मेथड।
हाँ, विधि के विरुद्ध ज्ञान के अराजकतावादी सिद्धांत की रूपरेखा। ये किताब तो वाकई एक धमाका थी।
विधि के विरुद्ध शीर्षक ही इतना प्रोवोकेटिव है, क्या मतलब था उनका? क्या वो सच में चाहते थे कि वैज्ञानिक बस जैसे मन करे वैसे काम करें, कोई नियम कायदा नहीं?
देखिए, ये एक आम गलतफहमी उनके बारे में। उनका ज्ञानामी मानसीय अराजकतावाद ये नहीं कहता कि जाओ और अराजकता फैलाओ, नहीं।
तो फिर क्या?
उनका तर्क ज्यादा बारीक है। उन्होंने विज्ञान का इतिहास देखा, खासकर गैलीलियो जैसे क्रांतिकारी वैज्ञानिकों को पढ़ा और पाया कि जो बड़ी बड़ी खोजें हुई वो अक्सर स्थापित नियमों का पालन करने से नहीं, बल्कि उन्हें तोड़ने से हुई हैं।
अच्छा, मतलब अगर गैलीलियो उस समय के साइंटिफिक मेथड पर ही अड़े रहते तो शायद वो सूर्य केंद्रित मॉडल की बात ही नहीं कर पाते।
बिल्कुल, फेयराबेंड का यही कहना था कि कोई एक ऐसी यूनिवर्सल वैज्ञानिक विधि है ही नहीं जिसका पालन हमेशा हर हाल में तरक्की की गारंटी दे। अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग तरीके काम करते हैं, कुछ लॉजिकल, कुछ शायद उतने लॉजिकल नहीं, कुछ तो बिल्कुल मौके पर सोच लिए गए, मतलब एडहॉक।
तो इसी विश्लेषण से वो अपने उस नारे पर पहुंचे, कुछ भी चलेगा या एनीथिंग गोज।
हाँ, और ये नारा अक्सर गलत समझा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आया उसे सच मान लो,
बल्कि ये कि ज्ञान की खोज में किसी एक तरीके से, किसी एक मेथड से बंध कर मत रहो। ये एक तरह से मेथड की तानाशाही से आजादी का नारा है।
बिल्कुल सही, ये एक हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन है, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं। ये एक चेतावनी है कि देखो, नियमों को पत्थर की लकीर मत समझो वरना अटक जाओगे।
ये भी दिलचस्प है कि ये किताब वो इम्रे लाकाटोस के साथ लिखने वाले थे।
हाँ, फोर एंड अगेंस्ट मेथड नाम से, दोनों दोस्त भी थे और दार्शनिक प्रतिद्वंदी भी, पर लाकाटोस की असमय मृत्यु हो गई तो सिर्फ फेयराबेंड का हिस्सा ही छप पाया।
अगेंस्ट मेथड के बाद 1978 में उनकी अगली किताब आई, साइंस इन अ फ्री सोसाइटी। इसमें उन्होंने क्या बात आगे बढ़ाई?
उन्होंने कहा कि भाई, आज के समाज में विज्ञान ने एक जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली, लगभग एक डॉगमेटिक, मतलब हठधर्मी दर्जा पा लिया है,
जिसे उन्होंने विज्ञानवाद या साइंटिज्म कहा।
हाँ, और इसी संदर्भ में उन्होंने वो चौंकाने वाली बात कही, चर्च और राज्य के अलगाव की तरह हमें विज्ञान और राज्य के पृथककरण के बारे में सोचना चाहिए।
विज्ञान और राज्य का पृथककरण, ये तो बहुत बहुत रेडिकल विचार है। क्या मतलब था उनका इससे?
उनका मानना था कि जब स्टेट, मतलब सरकार, विज्ञान को बिना सवाल किए सपोर्ट करती है, उसे खास दर्जा देती है, तो विज्ञान खुद एक विचारधारा बन जाता है, और फिर वो दूसरी ज्ञान प्रणालियों को, जैसे पारंपरिक ज्ञान है, मिथक है या वैकल्पिक चिकित्सा है, उनको दबाता है।
अच्छा,
वो कहते थे कि एक स्वतंत्र समाज में भाई सबको अपनी बात कहने का हक होना चाहिए, वैज्ञानिक सिद्धांतों को भी बाकी ज्ञान प्रणालियों के साथ बराबरी के मैदान में मुकाबला करना चाहिए, उन्हें पहले से ही VIP ट्रीटमेंट क्यों मिले।
फिर 1987 में आई फेयरवेल टू रीजन, तर्क को विदाई। क्या यहां वो पूरी तरह तर्क के खिलाफ हो गए?
नहीं, फिर से शीर्षक थोड़ा भ्रामक हो सकता है। वो तर्क को विदाई नहीं दे रहे थे, बल्कि तर्कसंगतता यानी रैशनैलिटी की एक खास पश्चिमी और उनके हिसाब से संकीर्ण समझ को विदाई दे रहे थे।
अच्छा।
इस किताब में उन्होंने सांस्कृतिक सापेक्षवाद पर और जोर दिया और अतुलनीयता यानी इनकमेंशरेबिलिटी के विचार को और विकसित किया।
अतुलनीयता, ये शब्द थॉमस कुहन से भी जुड़ा है, फेयराबेंड का इस पर क्या कहना था?
हाँ, ये विचार उन्होंने कुहन के साथ साझा किया और आगे बढ़ाया। मूल बात यह है कि दो अलग अलग वैज्ञानिक सिद्धांत, या मान लीजिए दो अलग अलग संस्कृतियों के विश्व दृष्टिकोण, वो इतने बुनियादी तौर पर अलग हो सकते हैं?
उनकी भाषा, उनकी मान्यताएं,
हाँ, यहाँ तक कि दुनिया को देखने का उनका तरीका भी इतना अलग हो सकता है कि आप उनकी निष्पक्ष पॉइंट बाय पॉइंट तुलना कर ही नहीं सकते। ये कहना मुश्किल है कि कौन बेहतर है, वो बस अलग हैं।
जैसे सेब और संतरे की तुलना,
कुछ वैसा ही। और ये विचार विज्ञान की उस सीधी सरल, एक दिशा में तरक्की वाली कहानी को चुनौती देता है।
और फिर उनकी आत्मकथा किलिंग टाइम, जो उनकी मृत्यु के बाद आई, वो उनके निजी जीवन और विचारों के जुड़ाव को और साफ करती है।
बिल्कुल, उसमें उनके युद्ध के अनुभव, उनके प्रेम संबंध, उनके अकेडमिक झगड़े, सब कुछ बहुत बेबाकी से लिखा है। और ये दिखता है कि कैसे उनके निजी अनुभव, खासकर वो युद्ध की चोट और सत्ता का अनुभव, उनके दार्शनिक विचारों से गहराई से जुड़े थे।
तो अगर हम उनके मुख्य दार्शनिक योगदानों को संक्षेप में देखें, पहला, ज्ञानी मानसीय अराजकतावाद, यानी प्रगति के लिए कोई एक यूनिवर्सल मेथड नहीं है।
सही।
दूसरा, पद्धतिगत बहुलवाद, यानी साइंटिस्ट को जो तरीका उपयोगी लगे उसे अपनाने की आजादी होनी चाहिए, भले ही वो तरीका अजीब लगे। तीसरा, अतुलनीयता का विचार, कि अलग अलग थ्योरीज या वर्ल्ड व्यूज की सीधी तुलना हमेशा मुमकिन नहीं।
चौथा, विज्ञानवाद की तीखी आलोचना, कि भाई सिर्फ साइंस ही ज्ञान का एकमात्र रास्ता नहीं है।
और पांचवा, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, या जिसे आप ज्ञान में मानसीय लोकतंत्र कह सकती हैं, यानी अलग अलग ज्ञान प्रणालियों का सम्मान करना।
हाँ, मोटे तौर पर यही उनके मुख्य बिंदु थे।
अब अगर हम उनकी तुलना उनके समकालीनों से करें, खासकर पॉपर से, जो उनके गुरु भी थे, क्या फर्क था?
हाँ, पॉपर से उनका रिश्ता बड़ा दिलचस्प था, छात्र से आलोचक बने। उन्होंने पॉपर के मिथ्याकरण सिद्धांत को ये कहकर चुनौती दी कि भाई अगर इसे इतनी सख्ती से लागू करते तो इतिहास में कई महान सिद्धांत जैसे कोपरनिकस का सिद्धांत वो तो पैदा ही नहीं हो पाते, क्योंकि शुरू में वो तथ्यों से मेल नहीं खाते थे या उनके पक्ष में उतने सबूत नहीं थे। और कौन से उनकी समानता ये थी कि दोनों मानते थे कि विज्ञान लीनियर तरीके से आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जहां कुहन ने एक स्ट्रक्चर देखा पैराडाइम शिफ्ट का, वहीं फेयरवेंड को ये प्रक्रिया ज्यादा बिखरी हुई, ज्यादा मौका परस्त, ज्यादा अराजक लगी।
तो फेयरबैंड बहुलतावाद को अपनाने में कुहन से भी ज्यादा आगे थे।
हाँ, कहीं ज्यादा रेडिकल थे वो इस मामले में।
उनकी विरासत की बात करें तो शुरुआत में तो उन्हें बहुत आलोचना झेलनी पड़ी, लोगों ने कहा ये तर्क का दुश्मन है।
हाँ बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उनके काम को ज्यादा गंभीरता से लिया जाने लगा। आज उन्हें एक जरूरी आलोचक माना जाता है वैज्ञानिक हठधर्मिता का, पद्धति वाली कट्टरता का।
और उनका काम विज्ञान के समाजशास्त्र SSK और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अध्ययन STS जैसे फील्ड्स के लिए भी महत्वपूर्ण रहा है।
हाँ, क्योंकि ये फील्ड्स यही तो देखते हैं कि विज्ञान सिर्फ लैब में नहीं बनता, उस पर समाज का, संस्कृति का, सत्ता का भी असर होता है। फेयरबैंड ने इन सवालों को बहुत पहले उठाया था।
लेकिन उनकी आलोचना भी तो गंभीर है। ये जो तर्क दिया जाता है कि उनका ज्ञान मीमांसीय अराजकतावाद खतरनाक रिलेटिविज्म को बढ़ावा देता है, जहां फिर छद्म विज्ञान और असली विज्ञान में कोई फर्क ही नहीं रह जाता।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण आलोचना है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने विज्ञान विरोधी आंदोलनों को एक तरह से बौद्धिक हथियार दे दिए।
हाँ,
कई वैज्ञानिकों और दार्शनिकों जैसे लैरी लोडान ने उनके ऐतिहासिक उदाहरणों की व्याख्या पर भी सवाल उठाए। उन्होंने तर्क दिया कि फेयरबैंड ने इतिहास को अपने मतलब के हिसाब से तोड़ मरोड़ लिया है और कुछ भी चलेगा का निष्कर्ष तार्किक रूप से नहीं निकलता। ये बहस आज भी चलती है।
फेयरबैंड ने खुद इन आलोचनाओं का जवाब कैसे दिया? क्या वो सच में चाहते थे कि ज्योतिष और खगोल विज्ञान को एक ही पल्लड़े पर रखा जाए?
उन्होंने बार बार साफ किया कि वो इरैशनलिस्ट नहीं है, वो रैशनैलिटी के एक खास संकीर्ण परिभाषा के आलोचक थे। उनका कहना था कि अलग अलग ज्ञान प्रणालियों को अपनी बात रखने का, अपनी योग्यता साबित करने का मौका तो मिलना चाहिए, उन्हें पहले से ही खारिज क्यों कर देना?
तो उनका उद्देश्य एक तरह से मानवीय जिज्ञासा को किसी एक मेथड के बंधन से मुक्त करना था।
हाँ, वो ज्ञान की एक ज्यादा समृद्ध, ज्यादा मानवीय, ज्यादा रचनात्मक परंपरा चाहते थे।
उनके कुछ मशहूर कोट्स उनके विचारों को और साफ करते हैं। कुछ भी चलेगा की तो हमने बात की एक और है, विज्ञान मिथक के कहीं ज्यादा करीब है जितना कि कोई वैज्ञानिक दर्शन मानने को तैयार होगा। इसका क्या मतलब निकाला जाए?
यहाँ वो कह रही हैं कि देखो, वैज्ञानिक सिद्धांत भी मिथकों की तरह ही दुनिया को समझने, उसे एक मतलब देने, उसे व्यवस्थित करने के इंसानी तरीके हैं। वो कोई खुदा का लिखा सच नहीं है, बल्कि हमारे बनाए हुए मॉडल हैं, फ्रेमवर्क हैं।
ये विज्ञान को कमतर आंकना नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस उसे एक मानवीय गतिविधि के रूप में देखना है।
और वो तीखा बयान राज्य और चर्च के पृथक्करण को राज्य और विज्ञान के पृथक्करण द्वारा पूरा खोना चाहिए, जो सबसे हालिया, सबसे आक्रामक और सबसे हठधर्मी धार्मिक संस्था है। ये तो सीधा हमला है संस्थागत विज्ञान पर।
हाँ, यहाँ उनका निशाना वो विज्ञान है जिसे राज्य का अंधाधुंध समर्थन मिलता है और जो फिर अपनी सत्ता का इस्तेमाल दूसरे विचारों को दबाने के लिए करता है। उन्हें गर्व था कि ऐसा विज्ञान बौद्धिक स्वतंत्रता के लिए उतना ही बड़ा खतरा बन सकता है जितना कभी राज्य समर्थित चर्च था।
ये सवाल तो आज भी बहुत मौजू है, विज्ञान और सत्ता का रिश्ता कैसा हो।
बिल्कुल,
अकेडमिक दुनिया से हटकर फेयरबैंड का व्यक्तित्व भी बड़ा रंगीन था, जैसा आपने बताया। गायक थे, थिएटर में रुचि थी।
हाँ, वो सिर्फ किताबों में सिर घुसाए रहने वाले प्रोफेसर नहीं थे, उनकी आवाज बहुत दमदार थी, ओपेरा गायक वाली, और वो क्लास में भी बड़े ड्रामेटिक थे। कहा जाता है कि कभी कभी मेज पर खड़े होकर लेक्चर देते थे।
सोचिए जरा,
अपनी बात पर जोर देने के लिए।
ये भी जानना अहम है कि वो विज्ञान की विचारधारा के आलोचक थे, पर खुद भौतिकी पढ़े थे और वैज्ञानिक उपलब्धियों का गहरा सम्मान करते थे। उनका निशाना विज्ञान नहीं, बल्कि विज्ञान को एक बंद हठधर्मी व्यवस्था बनाने वाले थे।
हाँ, और उनकी वो युद्ध की चोट, उसने उन्हें जीवन भर प्रभावित किया, न सिर्फ शारीरिक तौर पर, बल्कि शायद उसने हाशिए पर पड़े लोगों, हाशिए पर पड़े विचारों के प्रति उनकी सहानुभूति को भी बढ़ाया।
वो कई भाषाएं जानते थे, अलग अलग दार्शनिक परंपराओं से जुड़े थे।
जी, जर्मन, इतालवी, अंग्रेजी, इससे उनके काम में एक खास तरह की गहराई और रेंज आती है।
और ये भी कि पॉपर और लाकाटोस जैसे लोगों से उनकी बौद्धिक लड़ाइयां चाहे कितनी भी तीखी रही हों, उनके व्यक्तिगत रिश्ते खराब नहीं हुए, उनमें गर्मजोशी बनी रही।
हाँ, ये भी सीखने वाली बात है कि विचारों पर बहस का मतलब व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होता।
बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें, पॉल फेराबिंड 20वीं सदी के दर्शन के एक महान प्रोवोकेटर थे, एक उकसाने वाले विचारक।
हाँ, जिन्होंने हमें सोचने पर मजबूर किया कि हम ज्ञान किसे कहते हैं, सत्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है, और क्या कोई एक ही रास्ता हो सकता है।
उनका काम हमें बार बार याद दिलाता है कि बौद्धिक विनम्रता कितनी जरूरी है और विचारों की विविधता, मतलब प्लूरलिज्म को बचाए रखना कितना अहम है।
शायद उनका सबसे स्थायी संदेश यही है कि किसी भी विचार को, चाहे वो कितना भी स्थापित क्यों न लगे, उसे चुनौती देने की, उस पर सवाल उठाने की जगह हमेशा खुली रहनी चाहिए। असहमति के लिए स्पेस बनाना जरूरी है।
श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज का युग, जिसे कुछ लोग पोस्ट ट्रूथ कहते हैं, जहां एक्सपर्ट्स पर सवाल भी उठते हैं और उनकी जरूरत भी पहले से ज्यादा महसूस होती है, ऐसे में हम फेयरबैंड के विचारों से क्या सीख सकते हैं?
हाँ, ये बड़ा सवाल है। हम वैज्ञानिक ज्ञान का सम्मान कैसे करें और साथ ही उसकी सीमाओं और उसकी संभावित हठ धर्मिता के प्रति एक आलोचनात्मक नजर कैसे बनाए रखें? इस संतुलन को कैसे साधा जाए?
सोचने वाली बात है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।